गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयि हम ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनीति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चात्यदेशधारिणे। श्रीकृष्णचैतन्यप्रभुनित्यानन्द श्रीअद्वैतगदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है इस रामनवमी की शुभकामनाएं आप सभी को। और रामायण एक्चुअली अपने आप में एक समुद्र के जैसा है, रामायण ग्रंथ जो है, तो पूरे रामायण को समझना या पूरे रामायण को डिस्क्राइब करना अपने आप में बहुत हर्क्यूलियन टास्क कहलाता है। तो हम एक पर्टिकुलर सेक्शन डिस्कस करेंगे जो कि रामायण का वन ऑफ द मोस्ट फेमस और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन में से एक आता है, क्योंकि इस सेक्शन में दो चीजें क्लियर होती है। एक तो भरत का कैरेक्टर पता चलता है और दूसरा भगवान रामचंद्र जब निर्देश देते हैं भरत और राम के प्रति प्रेम, और राम और भरत मिलाप में बहुत सारे निर्देश आते हैं। तो चूंकि ये सेक्शन ऑलरेडी आप लोगों को कहानी पता है, परंतु हम इसको इस तरह से डिस्कस करेंगे कि हम कंटिन्यू करेंगे और बीच बीच में जहां भी लेसन आएंगे वो हम लेसन डिस्कस करेंगे। और ऑल दो आप लोगों ने रामायण सुना है, परंतु मुझे विश्वास है कि जब हम शास्त्र में से इस प्रकार से पढ़ते हैं डिटेल्स में जाके, तो उससे बहुत सारी नई चीजें सीखने मिलती हैं। तो अभी हम डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं एक पर्टिकुलर इंसिडेंट से। यहाँ पे भगवान रामचंद्र, सीता माता और लक्ष्मण ये लोग ऑलरेडी जा चुके हैं, अयोध्या से जा चुके हैं, और उसके बाद अयोध्या से उनके जाने के बाद दशरथ जी का देह त्याग भी हो चुका है। और उसके आगे से हम इस सेक्शन को स्टार्ट करेंगे। दशरथ जी का देह त्याग होता है तो अयोध्या में इमरजेंसी हो जाती है, इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाती है, क्योंकि नेचुरली जब कोई राज्य के राजा अपना शरीर त्याग कर दें तो उस राज्य को संभालने में बहुत कठिनाई होती है। तो फिर क्या होता है, जो मिनिस्ट्री है सुमंत को राजा बना दिया जाता है टेम्परेरी कुछ समय के लिए, और वशिष्ठ मुनि तुरंत कुछ मंत्रियों या कुछ सैनिकों को जो भरत के नाना जी का घर है गिरि ब्रजपुर, उसका नाम है के प्रदेश के अंदर गिरि ब्रजपुर नाम से उनका कैपिटल है, वहां पे उनको तुरंत भेजा जाता है। और नॉर्मली ऐसा बताते हैं रामायण में कि 8 से 10 दिन का समय था जाने के लिए, परंतु जो घुड़सवार थे, जो रथ लेके जा रहे थे, वो इतना फास्ट जा रहे थे क्योंकि उनका दिमाग बहुत डिस्टर्ब था ना, तो उनको रास्ते में उन्होंने बहुत सारे जंगल पार किए, बहुत सारी सिटीज आई, गार्डन आए, रोडवेज, बहुत सारी चीजें आई, परंतु उन्होंने कुछ नोटिस नहीं किया उसको। तो और क्योंकि समय भी नहीं था ना, तो उसको नोटिस करने का समय था ना अप्रिसिएट करने का समय था। कभी अगर वो लोग पिकनिक मनाने जा रहे होते तो इन सब चीजों को देख के, इन सब चीजों से बातचीत करते इन सब चीजों के बारे में, परंतु सिचुएशन इतनी कठिन थी कि जो घुड़सवार थे उनको टाइम ही नहीं था, इवन खाने पीने का भी समय नहीं था। दिन रात वो लोग केवल उनका एक ही लक्ष्य था कैसे केकई देश में पहुंचना है, ना तो खाने का समय ना पीने का समय। और इसमें आता है कि घोड़े जितनी तेजी से चल रहे थे उतनी तेजी से उन लोगों के मन चल रहे थे, और वो बार बार सोच रहे थे कि अयोध्या में क्या चल रहा होगा, क्योंकि अयोध्या इतनी कठिन सिचुएशन में पहुंच चुकी थी कि उनको समझ में नहीं आ रहा था अयोध्या में किस प्रकार के ये संकट के बादल आए हैं और इससे कैसे हैंडल करना है। तो जो भी ये घुड़सवार थे, हालांकि लॉन्ग रूट जो था वो करीब 8-10 दिन का था, परंतु ये लोग बहुत शॉर्ट रूट से जाते हैं, और शॉर्ट रूट में ऐसा आता है कि कठिन भी था, ऐसा नहीं था कि हर जगह सिटी थी, जंगल के रास्ते से जाते हैं, और बहुत फास्ट स्पीड से ये लोग केकई देश की तरफ बढ़ रहे हैं। विशेष रूप से वशिष्ठ मुनि ने उनको बोला था कि भरत को ना तो पिता की मृत्यु के बारे में कुछ बताना और ना राम के वनवास के बारे में कुछ बताना। तो यहाँ पे एक पॉइंट आता है इन घोषवानों की जो जर्नी को देख के, कि जब कोई व्यक्ति कोई एम्बिशन पे फोकस करता है तो उसकी बॉडी आसानी से हंसते हुए टॉलरेट कर लेती है, कभी कभी दुख सुख सबको टॉलरेट कर लेती है। जब कोई किसी लक्ष्य में स्थित होता है तो व्यक्ति फिर ज्यादा सुख सुविधाओं को नहीं देखता है, उसी तरह से वो सारी कठिनाइयों को टॉलरेट कर सकता है जैसे कोई हीरा टॉलरेट करता है कठिनाइयों को, जब उसको काटा जाता है या छीला जाता है तो हीरा कठिनाइयों को टॉलरेट करता है। तो इसके बाद वशिष्ठ मुनि ने उनको क्लियरली बोला था कि वहां पे जाना तो ये मत बताना कि राम का वनवास हुआ है या पिता की मृत्यु हुई है, और वहां पे मुस्कुराना जाके उन लोगों को गिफ्ट देना, और भरत से केवल इतना बोलना कि उनकी आवश्यकता है, अयोध्या में उनकी आवश्यकता है, इस तरह से बोल के उनको लेके आइए। और ये लोग फास्ट चलते चलते 4 दिन में आधी रात में ये लोग केकई में पहुंचते हैं, गिरिब्रजपुर के एंट्रेंस तक पहुंचते हैं, और उसी रात में भरत को एक सपना दिखाई दे रहा है। भरत आधी रात में सपने देख के एकाएक उठ जाते हैं, इतना डरावना सपना होता है। उस सपने में वो देखते हैं कि उनके पिता जो महाराज दशरथ हैं, महाराज दशरथ एक पहाड़ी के चोटी पे खड़े हुए हैं, चोटी से मतलब क्लिफ, जहां से एकदम ढलान आती है व्यक्ति नीचे गिर जाता है, वहां पे दशरथ खड़े हुए हैं और बहुत अजीब तरीके से दिख रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे वो पागल हो गए हैं, कुछ अलग तरीके से व्यवहार कर रहे हैं, जैसे पागल लोग चिल्लाते हैं और हंसते हैं जोर जोर से, उस प्रकार से दशरथ व्यवहार कर रहे हैं। और भरत ने देखा कि वो दौड़ के जा रहे हैं, और जब तक वो वहां तक पहुंचते तब तक दशरथ पहाड़ी से नीचे घाटी में गिर चुके हैं, और जब उन्होंने जाके देखा ऊपर से देखा तो नीचे घाटी में दशरथ एकदम खून से लथपथ हैं, उसी में कीचड़ से भी लथपथ हैं, और वहां पे बैठे हैं, और उनके हाथ में एक कटोरा है, उस कटोरा में कुछ 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 तेल या कुछ ऐसा रखा हुआ है, उस तेल को वो पी रहे हैं, मुंह लगा के पी रहे हैं। तो ये दृश्य देख के भरत एकदम भयभीत हो गए और रोने भी लगे, उनकी आंखों से आंसू आने लगे इस तरह से, और उनको ऐसा लग रहा है चारों तरफ से अंधेरा हो रहा है, आंधी आ रही है, तो भरत को समझ में नहीं आ रहा है। और उसके बाद एकाएक उन्होंने देखा कि एक राक्षसी आती है एक रथ में आके, और जोर जोर से हंसती रहती है, और वो राजा दशरथ को खींच के दक्षिण दिशा की तरफ जाती है, और एक ऐसे रथ में बिठा के जाती है जो रथ गधे जो उसको चला रहे हैं, घोड़ों की जगह पे वो रथ गधे चला रहे हैं, और वो रथ जो है दक्षिण दिशा की तरफ जा रहे हैं। और दशरथ ने एक गले में माला पहनी है, और दशरथ के चेहरे पे उसने सिंदूर लगाया है, जो राक्षसी थी दशरथ ने उसके चेहरे पे सिंदूर लगाया था, जैसे बलि के लिए ले जाते हैं तो चेहरे पे सिंदूर लगाया जाता है, उस प्रकार से उस राक्षसी ने दशरथ के चेहरे पे सिंदूर लगाया है। और जब इस तरह से भरत ने सुना तो उनकी नींद गायब हो गई, पूरी रात सोए नहीं, और दूसरे दिन सुबह जब वो अपने मित्रों को ये सब बता रहे थे तो उनके मित्र उनको समझा रहे थे कि ये तो केवल सपना है, और उनको एक्सप्लेन कर रहे थे, उनका ध्यान बटाने की कोशिश कर रहे थे, परंतु भरत को बहुत चिंता थी। और भरत ने अपने मित्र से बोला भी कि जब अंदर इतना ज्यादा नेगेटिविटी भरा हुआ है तो आपकी बात कौन सुनेगा, अगर नेगेटिव थॉट्स किसी के अंदर हैं लगातार उसके मन में घूम रहे हैं तो कोई व्यक्ति फिर बाहर चाहे कितना भी पॉजिटिव चलता रहे उसको कोई सुनेगा नहीं। कई बार ऐसा होता भी है कि हम किसी से बात करते हैं, हम अपने मन अपने बारे में ही सोचते रहते हैं, और वो कुछ बोलता है हमें ध्यान नहीं आता उसने क्या बोला है। तो इस प्रकार से भरत के साथ हो रहा था, क्योंकि रात भर वो सोच रहे थे इन सब वस्तुओं को, और रात भर सोचने के कारण दूसरे दिन सुबह से वो बहुत डिस्टर्ब थे। और जब उनके मित्रों ने बार बार पूछा तो भरत ने एक्चुअली अयोध्या की तरफ देख के भरत ने बोला कि आपको पता नहीं है कि इस ऐसे सपने का क्या मतलब होता है, ऐसे सपने का मतलब है कि या तो मैं मरने वाला हूँ, या लक्ष्मण मरने वाला है, या हमारे पिता मरने वाले हैं। और ऐसा बोल के वो अयोध्या की तरफ देखने लगे, अयोध्या जिस दिशा में थी उस दिशा में देखने लगे। उनको पता नहीं था कि जो उन्होंने सपना देखा है वो ऑलरेडी कितने सारे लोगों का हृदय तोड़ चुका है अयोध्या में ऑलरेडी। तो सपना एक ऐसी भाषा है, कई ऐसी फॉरेन लैंग्वेज है जिसके द्वारा भाग्य हमें सिखाता है कि जीवन में क्या चेंज होने वाला है। सपना भी वैसे एक भाषा है, सामान्य लोगों को समझ में नहीं आती है, परंतु सपना भी एक भाषा है। एस्ट्रोलॉजी में एक सेक्शन भी आता है कि सपने के द्वारा व्यक्ति बता सकता है किस प्रकार का सपना देखा, उससे क्या फल मिलता है या उसको फ्यूचर में क्या मिलेगा। तो भरत ने उस चीज को देखा, और जैसे ही सुबह ये वो लोग ये बात कर रहे थे, उसी समय अयोध्या से भरत के पास मैसेज आया कि आपको बुलाया है, अयोध्या से मैसेंजर्स आए हैं, तुरंत आप राजमहल में आइए। और भरत समझ गए, भरत को बोला जाता है अप्रमेय, उनका नाम बोला जाता है अप्रमेय, कि वो व्यक्ति के अंदर हिडन सीक्रेट्स को भी समझ जाते हैं, कोई चीज उनसे छुपती नहीं है। तो भरत दौड़ते हुए राजमहल में जाते हैं, और जैसे ही इन सैनिकों को देखते हैं, उन सैनिकों को एक बार देख के भरत समझ जाते हैं कि अयोध्या में कुछ ना कुछ इमरजेंसी है। और साथ साथ वो देखते हैं कि इतनी सारी गिफ्ट्स आई हैं, तो समझ जाते हैं नेचुरली अयोध्या के सबसे ऊंचे व्यक्ति ने भेजी हैं, या तो वशिष्ठ मुनि ने या महाराज ने, उनके पिता ने। और जब वो देखते हैं मैसेंजर्स की आंखों को देखते हैं, आंखें गीली गीली हैं और आंखों में हमेशा ऐसा जैसे कोई बहुत ज्यादा रोता है तो आंखों के नीचे काला काला जैसा हो जाता है। और उन लोगों ने जो शॉर्ट मैसेज दिया उससे भरत को हमेशा पहले से ही डाउट था, परंतु भरत तुरंत उनसे प्रश्न करने लगे। भरत ने बोला कि पिताजी ठीक हैं, और राम और लक्ष्मण भी ठीक हैं क्या, कौशल्या स्वस्थ हैं पूरी तरह से? और कौशल्या को उन्होंने बोला गॉडेस ऑफ वर्चू पर्सोनिफाइड, धर्म की धर्मदर्शिनी। और उसके बाद सुमित्रा ठीक है या मेरी माँ ठीक है? तो एक मैसेंजर जो थे उनको ऑलरेडी ऐसा इंस्ट्रक्शन मिला हुआ था कि भरत को इस प्रकार से नहीं बताना है कि क्या हुआ है। तो उन मैसेंजर ने बताया कि आपने जिन 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 के बारे में आप पूछ रहे हैं वो सभी ठीक हैं, और उनके साथ क्या हो सकता है कि, और फिर बताया कि आप तो निश्चिंत रहिए कि सौभाग्य की लक्ष्मी आपका इंतजार कर रही है जब आप वहां पे जाएंगे, और तुरंत आप हमारे साथ अयोध्या आइए, आचार्य वशिष्ठ आपको तुरंत देखना चाहते हैं, बहुत जरूरी कार्य है। भरत ने इतना सुना, परंतु उसके बाद भी भरत को भरोसा नहीं होता है कि ये लोग जो बता रहे हैं वो समझ जाते हैं कि जो ये बताना चाहते हैं वो यहाँ पे नहीं बताएंगे। तो केवल एक ही तरीका है कि हम तुरंत अयोध्या के लिए निकल जाएं, वहां जाके ही सब सच्चाई पता चलेगी। और जैसे ही ऐसा भरत सोचते हैं, भरत तुरंत तैयार हो जाता है अयोध्या जाने के लिए, और भरत विदा देते हैं अपने नाना जी को, और नाना जी उनके सिर को चूमते हैं और सिर पे जो बाल हैं उसको स्निफ करते हैं। वैदिक समय में जब बड़े लोग छोटे बच्चों को प्रेम करते थे तो उनके मत्थे पे चूमते थे या उनके सिर पे हाथ रखते थे, बालों पे हाथ रखते थे। तो भरत के नाना जी ने उनको इस प्रकार से प्रेम किया और उनको 2,000 गोल्ड कॉइन, 1,600 घोड़े हाथी और बहुत सारे धन संपत्ति दे के उनको भेजा वापिस। और केकई से अयोध्या जाने में उनको 8 दिन लगे, मैसेंजर के लिए लौटने में ज्यादा समय लगा क्योंकि जब वो आए थे उस समय वो इतने फास्ट आए थे कि 4 दिन में ही आ गए थे, परंतु इस बार चूंकि वो मेन रास्ते से आ रहे थे और सामान भी बहुत सारा था इसलिए उनको लंबा समय लगा। भरत चाहते थे कि ग्रुप से अपने आप को तोड़ के जल्दी पहुंच जाए अयोध्या, परंतु उनको रुकना पड़ा वहां पे क्योंकि वो उनकी जिम्मेदारी थी। रास्ते में बहुत सारे ऐसे राज जाते थे जहाँ पे शत्रु पक्ष हो सकता है, तो इसलिए भरत उसके साथ साथ चलते हैं। परंतु जब कौशल राज्य में आते हैं, कौशल राज्य एक्चुअली बहुत बड़ा राज्य था, कौशल राज्य में अयोध्या उनका कैपिटल था, तो जैसे ही कौशल राज्य की सीमा में आते हैं तो भरत फिर बोलते हैं शत्रुघ्न से बोलते हैं कि आप यहीं पे रुको, आप मतलब आप इनके साथ आइए, मैं आगे आगे आता हूँ। तो सारे रथों को शत्रुघ्न को दे के, सारी संपत्ति को शत्रुघ्न के समर्पित करके खुद निकल के आ जाते हैं। और भरत का रथ बहुत फास्ट स्पीड से अयोध्या जाता है, परंतु जब अयोध्या के सामने अयोध्या पहुंचते हैं वो 8वें दिन के एकदम सुबह पहुंच जाते हैं, 8वें दिन की मॉर्निंग में पहुंच जाते हैं। जब गेट के बाहर पहुंचते हैं तो उनका जो जो घोड़ा था, घोड़ा और घुड़सवार, वो लोग पहचान ही नहीं पा रहे थे कि अयोध्या नगरी है। घुड़सवार ने बोला कि हम शायद गलत जगह पे आ गए, ये अयोध्या हो ही नहीं सकती, ये तो कोई खंडहर जैसी है, खंडहर लग रहा है, क्योंकि अयोध्या नगरी में कुछ था ही नहीं, सारे के सारे गेट खुले हुए थे, कोई बाहर से नहीं आ रहा था, सारा व्यापार बंद हो गया था, घरों में अग्नि नहीं जल रही थी, मंदिर में भी पूजा होना बंद हो गई थी, तो एकदम सुनसान लग रहा था। भरत के घोड़ों ने भी आगे बढ़ने से मना कर दिया, घुड़सवार जो कि सारथी था उसने भी बोला कि ये पता नहीं कौन सी जगह है, और भरत ने भी सोचा कि हम गलत जगह पहुंच गए हैं, ये अयोध्या है ये वही अयोध्या है क्या जिसको हम छोड़ के आए थे, अभी तो ये अयोध्या ऐसी लग रही है जैसे भूतों के रहने की जगह, यहाँ पे इतना साइलेंस क्यों है और कोई सिटीजन भी नहीं है, कोई गार्डन में भी सफाई नहीं कर रहा है, और ऐसा लग रहा है कि ये अयोध्या पूरा खत्म हो चुका है, ये जंगल के जैसा लग रहा है, अयोध्या के जो फैमिलियर साइट और साउंड थे वो सब खत्म हो गया है, इवन पेड़ों के भी पत्ते पूरे गिर चुके हैं, पेड़ पतझड़ का समय नहीं था परंतु भगवान राम के विरह में पेड़ों ने भी अपने सारे पत्ते गिरा दिए थे, तो भरत को बहुत आश्चर्य हुआ, और भरत जब जैसे जैसे वो गेट के अंदर आ रहे हैं, वैजयंत गेट से अंदर आते हैं, तो भरत देखते हैं कि जो भी गार्ड उनको देख रहे हैं उनसे आंखें नहीं मिला रहे हैं, उनको प्रणाम कर रहे हैं और फिर चले जाते हैं, और सबकी आंखों में आंसू है, हल्का सा आंसू है, परंतु कोई बात करना नहीं चाहता, जैसे ही भरत किसी से पूछते हैं वो चले जाते हैं, उनसे बताते नहीं है, और जो मेन बाजार है वो भी पूरा खाली है, मंदिर भी पूरे बिना भगवान की सेवा के रखे हुए हैं, और भरत तुरंत उतर के जैसे जैसे भरत आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे उनका डर बढ़ता जाता है, उनको लगता है कि पता नहीं अयोध्या में हुआ क्या है, ऐसा क्या हो गया यहाँ पे, तो तुरंत तो वो उतर के सबसे पहले अपने पिता के महल में जाते हैं, और पिता के महल में जाते समय भी वो देखते रहते हैं कि क्या क्या डिटेल्स है, देखते हैं कि पिता के महल के गेट पे भी सफाई नहीं हुई है, धूल जमी हुई है, तो उनको समझ में नहीं आता है कि ये क्या चल रहा है, पिताजी का महल भी साफ नहीं है, पूरा सिटी गंदा है इस प्रकार से, और उनके यहाँ पिताजी के महल के ऊपर झंडे भी नहीं लगे हुए थे, कुछ कुछ सिटीजन ऐसे लग रहे थे जो कि आसपास आते थे, भरत को प्रणाम करते थे, चले जाते थे, मंदिर कोई भी व्यापार भी नहीं चल रहा था, सब कुछ खत्म हो गया था, और इस प्रकार से सोचते सोचते भरत राजा के महल में जाते हैं, और राजा के महल में जब वो उनको नहीं पाते हैं तो नेचुरली दूसरे महल में जाते हैं, दूसरा ऑब्वियस महल था कैकई का महल, और जब कैकई के महल के अंदर भरत घुसते हैं तो उस महल का एनवायरमेंट एकदम अलग था, अयोध्या सिटी के हिसाब से उनका महल का एनवायरमेंट एकदम अलग था, कैकई तुरंत अपने सोने के उस पे बैठी हुई थी, और तुरंत उछल के जब उनको पता चला कि भरत आ रहे हैं तो कैकई उनकी तरफ गई, और कैकई की खुशी को देख के भरत कंफ्यूज हो जाते हैं, बहुत सरप्राइज हो जाते हैं भरत कि ये कि क्या चल रहा है, पूरा अयोध्या सिटी का माहौल अलग है और कैकई एकदम खुश है, सभी लोग दुखी हो कैकई एकदम खुश है, तो भरत थोड़े अचरज में पड़ जाते हैं, और ऐसा आता है रामायण में कि कैकई ऐसे लग रही हैं जैसे कोई कोई एक झील है, उस झील में जितने भी कमल थे सारे के सारे कमल के ऊपर बर्फ जम गई है, इतनी ज्यादा ठंड है, परंतु उसी झील के पास में एक औरत रहती है, उसने अपने चारों तरफ आग लगा के रखी है, अपने आप को गर्म रखी हुई है, तो भरत ये वो तुलना दी गई है यहाँ पे, चारों तरफ अयोध्या नगरी सूनी है, सभी लोग दुखी हैं, परंतु कैकई बहुत खुश है, कैकई ने भरत को गले से लगाया और उनसे पूछा कि आप तो उनसे बोला कि आप तो मेरे पिता के घर से आए हो, मेरे पिता का घर मेरे लिए अमृत के समान है, और महल मतलब मेरे लिए हेवन स्वर्ग के जैसा है, मैं जानना चाहती हूँ कि मेरे पिता और मेरे भाई कैसे हैं, और आप कब वहां से निकले थे, आप थक गए होंगे, अभी बैठो मैं आपको भोजन और पानी पिलाती हूँ, इस तरह से बोल के वो अरेंजमेंट करने लगते हैं, कह के अरेंजमेंट करती हैं, भरत को अभी भी कंफ्यूज है भरत, क्योंकि उनको मीनिंग अभी तक पता नहीं चला है, और कैकई का ये व्यवहार देख के उनको और भी ज्यादा कंफ्यूजन बढ़ रहा है कि ऐसा क्या चल रहा है, और भरत उनसे पूछते हैं फिर वो बोलते हैं कैकई में सब कुछ अच्छा है, नानाजी और चाचा जी ने बहुत सामान भेजा है जो कि शत्रुघ्न लेके आए हैं, लेके आएंगे, मैं तो आगे आया हूँ ये पता करने के लिए कि वशिष्ठ मुनि ने वशिष्ठ गुरु जी ने हमें क्यों जल्दी भेजा है, कितना अर्जेंसी क्यों था हमें बुलाने का, पहले मुझे बताइए कि अयोध्या में क्या गलत हुआ है, ये शहर पूरा मरुस्थल जैसा क्यों लग रहा है, शमशान जैसा क्यों लग रहा है, क्यों हर व्यक्ति डरा हुआ है, राजा कहाँ है, राजा अपने महल में भी नहीं है, मुझसे कोई बात भी नहीं कर रहा है, हर गार्ड मुझसे आंखें चुरा चुरा रहा है। मुझे बताइए राजा कहाँ है, आपके महल में है कि कौशल्या माँ के महल में है, मैं उनको तुरंत मिलना चाहता हूँ। अभी यहाँ पे एक चीज है कि भरत ने दशरथ जी को पिछले 12 साल से देखा नहीं है, 12 साल से वो अपने मामा के यहाँ थे, 12 साल बाद आ रहे हैं, तो वो पूछते हैं कि पिताजी कहाँ हैं, मैं पिताजी को मिलना चाहता हूँ, इतने समय बाद मैं पिताजी को मिलना चाहता हूँ। और जब इस प्रकार से पूछा तो कैकेयी ने बहुत सूखा सा उत्तर दिया, ड्राई आंसर दिया। वो क्या आंसर था, या गति सर्वभूतानां ताम गतिं ते पिता गतः, जिस जो गति सभी जीवों की होती है वो गति तुम्हारे पिता की भी हुई है, मतलब आपके पिता की मृत्यु हो गई है। और कैकेयी ने जब इस प्रकार से बोला तो कैकेयी ने जिस शांति से इन शब्दों को बोला उससे भरत को और ज्यादा दुख हुआ, समझ में नहीं आया कि क्या किस प्रकार से कैकेयी बोल रही है, कोई व्यक्ति इतनी खराब न्यूज ऐसे शांति से कैसे दे सकता है। और भरत वो दुखी होके तुरंत जमीन से गिर गए, बेहोश जैसे होने लगे और जोर जोर से रोने लगे। तो भरत को यह तो दुख हुआ कि उनके पिता की मृत्यु हो गई, परंतु उनकी माँ ने जिस प्रकार से यह न्यूज दिया वो सुन के वो उनको और भी ज्यादा दुख हुआ कि मेरी माँ इतनी खुश कैसे है ये सब चीज बताने में। तो इसमें एक चीज समझने लायक है, एक एक पॉइंट हम सीख सकते हैं कि जो इनसेंसिटिव लोग होते हैं, जो अपना जीवन इस प्रकार से जीते हैं कि उनका उनका कुछ एजेंडा पूरा होना चाहिए, एजेंडा ड्रिवन लाइफ स्टाइल, उनका खुद का कुछ एजेंडा है वो पूरा होना चाहिए, उसके लिए वो किसी के साथ भी कुछ भी कर सकते हैं। ऐसे इनसेंसिटिव लोगों को पता ही नहीं रहता है कि उनके शब्द कितने टेम्परेचर वाले होते हैं, जब उनके शब्द उनके मुंह से निकलते हैं तो दूसरे व्यक्ति के हृदय को पूरा तरीके से चीर देते हैं। तो इसी तरह से कैकई जो थी, अभी कैकई का एजेंडा बेस्ड लाइफ स्टाइल था, इसलिए पूरी तरह से इनसेंसिटिव हो गई थी, पूरे अयोध्या के दुख को भी फील नहीं कर पा रही थी। तो भरत को समझ में ही नहीं आया कि ये क्या चल रहा है, और उसी समय फिर कैकेयी ने बोलना चालू किया, जो भगवान ने गीता में अर्जुन को उपदेश दिए हैं वो उपदेश कैकेयी ने भरत को बताना चालू किया कि देखो जो बुद्धिमान है वो तो मरते वो जीते लोगों में से कोई अंतर नहीं करते हैं, इसलिए तुम्हें दुख नहीं करना चाहिए, कोई दुख करने की कोई जरूरत नहीं है, शरीर तो कभी ना कभी मर ही जाएगा, और मृत्यु आंसू तो तब बहाना चाहिए जब हम कुछ कर सकें, अभी चाहे आप कितना भी रोइए आपके पिता तो वापस नहीं आएंगे, तो इसलिए रोना छोड़ दो उठ जाओ। अभी ये इंस्ट्रक्शन बहुत अच्छे हैं परंतु गलत समय पे दिए जा रहे हैं। आप देखिए भगवान कृष्ण ने यही इंस्ट्रक्शन अर्जुन को दिए थे, और अर्जुन के लिए ये इंस्ट्रक्शन एकदम मेडिसिन के जैसा काम किए थे, अर्जुन एकदम शांत हो गए थे ये सुन के। और वही सेम इंस्ट्रक्शन कैकेयी जो है वो जब भरत को दे रही है तो भरत के हृदय में वो चाकू के जैसे लग रहे हैं। तो सेम लेसन दो अलग अलग सिचुएशन में देके दो अलग अलग तरीके से कार्य करता है। जैसे एक और उदाहरण देख सकते हैं, जैसे कोई भक्त मान लो ऑपरेशन में एडमिट हुए, मान लो कोई कोई भक्त को कोविड-19 हुआ है वो हॉस्पिटल में एडमिट है, और दूसरे भक्त कोविड-19 में तो हॉस्पिटल में उससे मिलने नहीं जा सकते, अगर कोई ऐसा बीमारी हुआ है जिसमें उसके पास जा सकते हैं, मान लो कुछ हो गया उनको फीवर आया है और हॉस्पिटल में एडमिट है, और दूसरे भक्त उनसे मिलने जाते हैं, अभी जब उनसे मिलने जाते हैं तो उनसे बोलते हैं ये तो तुम आप इतने परेशान क्यों हो, आप तो बॉडी नहीं हो आप तो आत्मा हो, ये बीमारी बीमारी तो बॉडी के लिए है। तो उस भक्तों को कैसा लगेगा, वो भक्त उस समय वो सब सुनना नहीं चाहता, उसको भी पता है कि मैं शरीर नहीं हूँ आत्मा हूँ, परंतु उस समय वो कम से कम कुछ चीज सुनना चाहता है कि थोड़ी सांत्वना उसको देनी चाहिए, जैसे किसी का एक्सीडेंट हुआ उसको प्लास्टर चढ़ा हुआ है हॉस्पिटल में डला हुआ है, उसको जाके बोलो कि ये प्लास्टर लास्टर तो सब एक्सटर्नल है आप तो बॉडी नहीं हो आत्मा हो, तो भक्त नाराज हो जाएगा। इसी तरह से है कि हमें कब फिलोसफी बताना चाहिए और कब फिलोसफी नहीं बताना चाहिए, ये एक बहुत बड़ा आर्ट है, नहीं तो अगर व्यक्ति हमेशा ही अगर सेंसिटिव नहीं होता है तो सेम फिलोसफी को अलग अलग तरीके से उपयोग कर सकता है। तो कैकेयी ने जब इन शब्दों को बोला तो उसका अपोजिट इफेक्ट हुआ, जब भगवान कृष्ण ने इन शब्दों को बोला था तो उसका अलग अलग इफेक्ट हुआ था। तो भरत ने ये सब सोचते हुए उनके उनका बहुत ज्यादा आंसू आ रहे थे, रोते रोते उन्होंने बोला कि मैं तो सोच रहा था कि मेरे बड़े भाई राम का राज्याभिषेक होने वाला था और शायद पिताजी मुझे इसीलिए बुलाए थे, परंतु उन्होंने तो मुझे ये न्यूज दे के सरप्राइज कर दिया, और हमारे पिताजी कितने सौभाग्यशाली थे कि उनके राम के जैसे पुत्र उनके साथ में थे। जब उन्होंने शरीर का त्याग किया तो राम के जैसे पुत्र उनके साथ में थे, और एटलीस्ट राम को ऐसा मौका मिला कि उनका अंतिम अंतिम क्रियाकर्म कर पाए। और भरत इस प्रकार से सोच रहे थे क्योंकि उनको पता नहीं था कि राम का वनवास हो गया है, तो वो सो उन्होंने इस तरह से बताया कि एटलीस्ट राम को उनका अंतिम अभिषेक अंतिम क्रिया करने का मौका मिला, और अभी पिता की मृत्यु के बाद नेचुरली जो बड़ा भाई है वो पिता के समान हो जाता है और पिता के जैसा गाइड करता है, डायरेक्ट करता है। तो फिर भरत बोलते हैं कि आज के बाद मैं भगवान राम का नेचुरल इंस्ट्रूमेंट हूँ, भगवान राम के हाथ में मैं इंस्ट्रूमेंट के जैसा हूँ, क्योंकि अभी पिताजी जा चुके हैं तो वही मेरे पिता है, अभी मैं उनका इंस्ट्रूमेंट हूँ। तो यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे भरत और लक्ष्मण का कंपैरिजन किया जाता है। हालांकि दोनों ही भगवान के अवतार हैं, दोनों ही भगवान के महान भक्त हैं, पर दोनों ने दो अलग अलग इन सब दो अलग अलग वस्तुएं उपयोग की। लक्ष्मण ने बोला था कि मैं राम का सेवक हूँ, और भरत ने बोला कि मैं राम का इंस्ट्रूमेंट हूँ। तो चाहे सेवक हो चाहे इंस्ट्रूमेंट हो, दोनों के पास ये चॉइस तो नहीं होती है कि सेवा करना है कि नहीं करना है, दोनों ही सेवा करते हैं। परंतु सर्वेंट सेवक जो होता है वो चुन सकता है कि कैसे सेवा करना है, परंतु इंस्ट्रूमेंट ये चुन नहीं सकता कि कैसे सेवा करना है। जैसे लक्ष्मण ने भगवान राम को बता दिया था क्लियरली कि वो कैसे सेवा करना चाहते थे भगवान राम की, वो बोले कि मैं आपके साथ जाऊंगा जंगल, परंतु भरत ने इंस्ट्रूमेंट के जैसा कार्य किया, भगवान राम जैसा बोलेंगे वैसा करेंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो इंस्ट्रूमेंट बनना जो है वो सर्वेंट बनने से भी बड़ा होता है। सर्वेंट बता सकता है कि मैं किस प्रकार से सेवा करना चाहता हूँ, परंतु इंस्ट्रूमेंट खुद नहीं बताता है, जैसा जैसा मालिक की इच्छा हो, जैसा भगवान की इच्छा हो, उस तरह से वो उस इंस्ट्रूमेंट को यूज कर सकते हैं। जैसे हम उदाहरण देते हैं कि अगर कोई डॉक्टर ऑपरेशन करता है तो ऑपरेशन करते समय वो इंस्ट्रूमेंट को उपयोग करता है, चाकू उपयोग करता है, कैंची उपयोग करता है, और भी इंस्ट्रूमेंट उपयोग कर सकता है। और जब ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है तो कोई व्यक्ति जाके चाकू को कॉन्ग्रेचुलेट नहीं करता है कि देखो आपने कितना अच्छा ऑपरेशन किया, वो जाके डॉक्टर को बोलता है कि आपने कितना अच्छा ऑपरेशन किया। तो इंस्ट्रूमेंट का मतलब जब भी कोई चीज सफल होगी तो हमें ग्लोरीज नहीं मिलेगी, ग्लोरी किसको मिलेगी? भगवान को मिलेगी। इंस्ट्रूमेंट का अपना कुछ इंडिपेंडेंस नहीं होता है, जिस प्रकार से जो मास्टर बोलता है वो करते हैं। तो भरत ने अपने आप को बोला कि अभी मैं भगवान राम के हाथ में इंस्ट्रूमेंट के समान हूँ, जिस प्रकार से वो बोलेंगे वो मैं करूंगा। तो इस प्रकार के स्वभाव को बोला जाता है परतंत्रियम। परतंत्रियम मतलब अपने आप को दूसरे के नियंत्रण में दे देना और उसको ये छूट देना कि वो जिस तरीके से चाहे हमें उपयोग कर सकते हैं। इसके अपोजिट जैसे भरत के लिए, लक्ष्मण के लिए भगवान के पास रहना बहुत जरूरी था, परंतु भरत के लिए उससे भी जरूरी था भगवान राम के उपदेशों को मानना, भगवान राम के निर्देशों को मानना। और जो चौथे पुत्र थे शत्रुघ्न, शत्रुघ्न के लिए बोला जाता है भागवत परतंत्रियम। शत्रुघ्न जो थे वो भरत पे डिपेंडेंट थे और भरत भगवान राम के भक्त थे, इसलिए शत्रुघ्न जो है भगवान की सेवा करते हैं भक्त की सेवा करके, सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट। शत्रुघ्न ने पूरी रामायण में भगवान राम की डायरेक्ट सेवा बहुत कम की है, वो भरत भगवान राम की सेवा करते थे, शत्रुघ्न भरत को असिस्ट करते थे। तो इस प्रकार का भाव देखा जाता है, भरत का भाव परतंत्रियम है, शत्रुघ्न का भाव भागवत परतंत्रियम है। तो इसके बाद फिर भरत ने बोला कि हे माँ, मैं जानना चाहता हूँ कि मेरे पिताजी एकाएक उनकी मृत्यु क्यों हो गई, उनको कोई बीमारी हुई थी क्या, और मुझे ये बताइए, क्योंकि महान व्यक्ति अपने शब्दों में हमेशा जीवित रहते हैं, तो मेरे पिता के मेरे लिए लास्ट इंस्ट्रक्शन क्या थे, अंतिम जब वो शरीर त्यागने वाले थे तो उन्होंने क्या निर्देश दिए थे, ये मैं जानना चाहता हूँ। इस प्रकार से भरत पूछते हैं, और कैकेयी फिर उसी तरह से बोलती हैं कि आपके पिता के तो लास्ट निर्देश, लास्ट उन्होंने क्या बोला था, ओ राम ओ सीता ओ लक्ष्मण, यही उन्होंने बोला था। और ये बोला था कि जो उन तीनों को देखेंगे वो सबसे ज्यादा सौभाग्यशाली होंगे। इस तरह से कैकेयी ने बताया कि दशरथ ने ये बोला था कि राम सीता लक्ष्मण जो भी उनको देखेंगे वो सबसे सौभाग्यशाली होंगे, ऐसा बोल के उन्होंने शरीर त्याग कर दिया। और कैकेयी ने जब ऐसा बोला तो भरत के हृदय में और ज्यादा डर बढ़ गया। फिर भरत एकाएक पूछे कि ये तीनों लोग कहाँ गए थे उस समय, अभी तो उनको ये पता नहीं था, केवल यही पता था कि पिता की मृत्यु हुई है। अभी उनको पता चला कि जब पिताजी ने बोला कि ये लोग जो आएंगे, इन लोगों को आते हुए जो देखेगा वो सबसे सौभाग्यशाली होगा, तब फिर भरत ने पूछा कि ये तीनों लोग कहाँ थे, सीता राम और लक्ष्मण कहाँ थे। इसके लिए फिर कैकई ने उसी तरह से शांति से बोला कि राम सीता लक्ष्मण तो जंगल की वेशभूषा में बदल के चले गए थे, दंडकारण्य जंगल में एंटर कर गए थे। अभी जब भरत ने इस प्रकार से सुना तो फिर भरत का सिर एकदम घूमने लगा। पहले पिता की मृत्यु, उसके बाद भाई का वनवास, ऐसा लगा कि जो बैड न्यूज है वो हमेशा ऐसे मल्टीपल में क्यों आते हैं, एक साथ क्यों नहीं आते। तो अभी भरत को पूरी सच्चाई मतलब इतना पता चला है, पूरी सच्चाई अभी भी पता नहीं चली, अभी इसके बाद पता चलेगी। और भरत ने तुरंत पूछना चालू किया, क्योंकि उनको पता चल उनको अगर लगा कि अगर भगवान रामचंद्र को निकाला था तो उसका कुछ ना कुछ कारण रहा होगा, क्या कारण था ये वो जानना चाहते थे। और उन्होंने उस समय सोच बोला भी कि भगवान राम ने क्या ऐसा गलत किया था, क्योंकि राज्य से वनवास के लिए उसको ही भेजा जाता था जिसने कोई बहुत बड़ा पाप किया हो। तो उन्होंने पूछा कि राम ने ऐसा क्या किया था, क्या उन्होंने किसी ब्राह्मण के यहाँ चोरी की थी, क्या उन्होंने किसी धार्मिक व्यक्ति को मार दिया था, या उन्होंने किसी दूसरे की पत्नी के साथ गलत व्यवहार किया था, मेरे मेरे भाई ने इस प्रकार से क्या किया गया था कि उनको अयोध्या से निकालना पड़े। तो यहाँ पे भरत जो है ऐसा बताते हैं कि भरत एक ऐसे समुद्र के समान है जिसमें हमेशा धर्म की लहरें प्रभावित होती हैं। तो भगवान राम को बहुत प्रेम करते थे, परंतु तब भी वो तैयार थे कि अगर भगवान राम ने कुछ गलती की होगी, मतलब राम को किस अगर कोई गलती के कारण निकाला गया, तो फिर वो उसको स्वीकार करने के लिए तैयार थे। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति धर्म को पालन करता है उसको धर्म से बहुत स्ट्रिक्टली अटैच रहता है। तो भरत ने तुरंत पूछा कि राम ने ऐसा क्या किया था कि उनको निकाल दिया गया। और कैकई ने फिर बोला कि नहीं, उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया था, राम तो कभी ऐसा कुछ कर ही नहीं सकते हैं, राम का चरित्र तो एकदम इम्पेकेबल, मतलब उस चरित्र पर कोई दाग नहीं है। वास्तविकता में ये फैक्ट है कि राजा तो राम को वो चाहते थे राज्य प्रदान करना, परंतु मैं चाहती थी कि आपको राज्य मिले, इसलिए आपको राजा बनाने के लिए मैंने दो वरदान, पुराने वरदान जो राजा ने मुझे बोले थे वो वरदान मैंने मांग लिए, और उस वरदान के कारण राम को 14 साल का वनवास और आपको अयोध्या का राज्य, ये मैंने आपके लिए अरेंज किया है। और जब भगवान राम जब राम चले गए तो राम के वियोग में राजा की मृत्यु हो गई, ऐसा बोल के कैकेयी शांत हो गए। अभी भरत के सामने पूरा केस हिस्ट्री खुला है, इतने समय बाद धीरे धीरे उनको ये पूरा केस हिस्ट्री पता चला कि वास्तविकता में उनकी माँ ने ये सब कुछ किया है। और ऐसा बोल के कैकेयी क्या बोलते हैं कि अभी मेरे प्रिय पुत्र, तुम्हें अयोध्या को राज्य करने में जितनी भी रुकावटें थी वो सारी रुकावटें मैंने दूर कर दी हैं, अभी तुम आओ अयोध्या के राज्य को संभालो। मैंने ये सब कुछ इसीलिए किया था कि तुम्हें राज्य मिल सके, इसलिए अभी ये दुखी होने का समय नहीं है, अभी तो तुम बहुत साहसी बनो और राज्य का भोग करो। जल्दी उठो और वशिष्ठ को इंस्ट्रक्ट करो और दूसरे ऋषियों को बोलो कि आपको तुरंत अभी आपके आपके सिर पे अयोध्या के राजा का ताज पहनाए। और ऐसा बोल के वो भरत को उठाने लगी, और जैसे ही भरत के पास जाती है भरत तुरंत अपना हाथ झटका देते हैं और कैकेयी एकदम से दूर जाती हैं, क्योंकि अभी तक वो एकदम उनका दूसरा मूड था। जब उन्होंने भरत को इस प्रकार से देखा तो एकदम से पीछे हट जाती है और पूरा महल में भरत के रोने की आवाज आने लगती है। और उसके बाद भरत को गुस्सा आना चालू होता है और भरत फिर दंडकारण्य जंगल की तरफ दंडकारण्य जंगल की तरफ जिस दिशा में दंडकारण्य जंगल था वहां पे आंख बंद करके भगवान राम से माफी मांगते हैं, प्रणाम करते हैं और बहुत देर तक माफी मांगते रहते हैं। और उसके बाद फिर भरत कैकेयी के ऊपर गुस्सा निकालना चालू करते हैं। भरत बोलते हैं कि कोई एक बिच्छू को क्या खुशी मिलती है जब वो अपनी माँ का ही पेट फाड़ के बाहर निकलता है, तो इसी तरह से मुझे ऐसी क्या खुशी मिलेगी इस राज्य को भोग करने में, जब मुझे पता है कि इस राज्य के भोग करने के पीछे मेरे पिता की मृत्यु और मेरे भाई का वनवास है, तो मैं इस राज्य को कैसे भोग करूंगा। और आपने मेरे पिता को मार के और मेरे भाई को जंगल में भेज के आपने मेरे शरीर में दो चाकुओं से वार किया है, और अभी मुझे ये बोल के कि मैं राज्य सिंहासन स्वीकार करूं आप उसमें नमक और हल्दी और ये सब कुछ डाल रहे हैं, जिससे कि वो दोनों के दोनों घाव बहुत खतरनाक हो जाए। मैं उसी समय मर गया था जिस समय आपने ये नारकीय घटनाएं मुझे बताई। अभी तो मेरे अंदर जीने की कोई इच्छा नहीं है, तो कोई डेड बॉडी किसी राज्य को कैसे संभाल सकता है। उसके बाद भरत बोलते हैं कि आप तो एक ऐसे ही राक्षसनी है जिसकी केवल एक ही इच्छा है कि हमारे हमारे पूरे इक्ष्वाकु वंश को खत्म कर दें। मेरे पिता ने सोचा कि वो एक चंदन को गले लगा रहे हैं, परंतु उनको पता नहीं था कि वो तो एक जलते हुए कोयले को गले लगा रहे हैं। केवल एक मूर्ख व्यक्ति ऐसे वृक्ष को काटता है, और केवल एक मूर्ख व्यक्ति जिस वृक्ष पर बैठा उस वृक्ष को काटता है और जड़ में पानी देने की बजाय पत्तियों में पानी देता है। तो इन्होंने बोला कि भगवान राम जो है वो एक बहुत बड़ी ब्रांच है और मेरे पिता दशरथ जो है वो जड़ के समान है। तो आप अगर ये सोचते हैं कि राम को जंगल में भेजकर मेरे पिता को मार के आप मुझे राज्य में बिठाएंगी, तो मैं राज्य नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे जैसे व्यक्ति को भगवान राम का सपोर्ट चाहिए और मेरे पिता का आशीर्वाद चाहिए। राम और पिता की प्रेजेंस के कारण ही मैं जीवित रह पाऊंगा, नहीं तो मैं गिर जाऊंगा और खत्म हो जाऊंगा। मैं एक ऐसी मछली के समान हूं जिसके लिए जिसका जो जल है वो राम और दशरथ की प्रेजेंस है। और फिर भरत ने बोला कि जैसे ही मैं इस राज्य को स्वीकार करूंगा, मेरे पिता को मारने का जो पाप है और मेरे भाई के वनवास का जो पाप है, वो आपके सिर से मेरे सिर पर आ जाएगा, इसलिए मैं इस राज्य को स्वीकार नहीं करूंगा। अगर मैं स्वीकार करूंगा तो पूरा संसार क्या बोलेगा कि मैंने अपनी माँ के द्वारा अपने भाई को मारवा डाला, अपने पिता को मारवा डाला और अपने भाई को रास्ते से हटा दिया, और मेरी माँ ने मुझे जिंदगी भर के लिए अपयश दिया है। ये बहुत जो पुण्यशाली लोग हैं उनके लिए बहुत कठिन है ऐसे पापी लोगों के साथ रहना। मुझे आश्चर्य है कि कौशल्या और सुमित्रा आपके साथ कैसे रह सकी, और राम तो आपको अपनी माँ से भी ज्यादा प्रेम करते थे, और आप कौशल्या भी आपको अपनी छोटी बहन के जैसा प्रेम करते थे। आपको भी राम के लिए बहुत प्रेम था। कैकई के दो नाम आते हैं, कैकई का एक नाम था सुमुखी और दूसरा नाम था सुलोचनी। सुमुखी इसलिए नाम था क्योंकि कैकई जब सुबह उठती थी तो सबसे पहले राम का दर्शन करती थी। जब जब पहली बार आंख खोलती थी तो राम सामने होना चाहिए, तब वो अपना दिन चालू करती थी राम का चेहरा देख के। और सुलोचनी मतलब हमेशा राम के बारे में वो बोलती रहती थी, राम के नाम लेते रहती थी, इसलिए उनको सुमुखी और सुलोचनी बोला जाता था। तो भरत बोलते हैं आपका तो खुद ही सुमुखी और सुलोचनी नाम था, कैसे आपका नाम ये कुमुखी और कुलोचनी हो गया? आप कैसे कुमुखी और कुलोचनी बन गए? और एक सांप के जैसे अभी आप उसी एक सांप के समान आप उसी वृक्ष को उसी व्यक्ति को काट रहे हैं जो कि आपको पानी जो कि आपको दूध प्रदान कर रहा है, उसी व्यक्ति को आप खत्म कर रहे हैं। और मैं तो एक कैफ के समान हूं, आप ये कैसे आशा कर सकते हैं कि मैं इस राज्य को हैंडल करूंगा? अगर मुझे इस राज्य को हैंडल करने की शक्ति भी है तो भी मैं नहीं करूंगा। मैं एग्जैक्टली जो आपने किया है उसको रिवर्स करूंगा। मैं ये श्योर करूंगा कि आपका कोई भी पाप की इच्छा पूरी नहीं हो। अगर भगवान राम आपको इतना प्रेम नहीं करते होते तो मैं अभी तक आपको अयोध्या से निकाल दिया होता। कोई इतना पापी व्यक्ति को यहाँ रहने की आवश्यकता नहीं है। अभी जब इतना सब कुछ हुआ, यहाँ पे एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। भरत हालांकि बहुत गुस्सा में है, परंतु उन्होंने अपने गुस्से में भी ये सोचा कि भगवान राम को क्या अच्छा लगेगा क्या अच्छा नहीं लगेगा। इतना ज्यादा भगवान राम के प्रति वो समर्पित थे कि उन्होंने ये बोला कि अगर राम आपको इतना प्रेम नहीं कर रहे होते तो मैं आपको अयोध्या से निकलवा देता। कई बार जब हम गुस्सा में आते हैं तो इमोशन के कारण बाकी चीजें भूल जाते हैं, परंतु इतने गुस्से में होने के बाद भी भरत को ये ध्यान था कि राम को क्या अच्छा लगेगा क्या अच्छा नहीं लगेगा। उनको पता था कि अगर मैंने इनको बाहर निकाला तो राम नाराज हो जाएंगे, इसलिए तो ये समझना चाहिए कि किस प्रकार से गुरु और कृष्ण के लिए अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। ये भरत के एग्जाम्पल से पता चलता है। और कैकई बहुत शॉक्ड थी जो जो ये सब सामने हो रहा था, क्योंकि कैकई तो कन्विंस थे कि उन्होंने जो किया वो सब अपने बच्चे के भले के लिए किया है, और उनका बच्चा ही अभी उनका उनकी गलतियों को उनके सामने ला रहा था। इसके बाद भरत ने बोलना चालू किया कि इक्ष्वाकु वंश में तो हमेशा ये ट्रेडिशन है कि सबसे बड़ा बच्चा जो है उसको राज्य मिलता है। केवल इक्ष्वाकु नहीं, कैकई वंश में भी इस प्रकार से ट्रेडिशन है। कैकई शब्द का जो मतलब है कुकू शब्द से आता है। कुकू का मतलब पीकॉक, जो मोर होते हैं वहां पे, बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। तो भरत ने बताया कि मोर की फैमिली में, पीकॉक फैमिली में भी ऐसा होता है कि जो सबसे पहले जन्म लेता है उसके उसके सिर पे नेचुरल क्राउन होता है, उसके सिर पे आप देखेंगे एक कलगी होती है अलग से। तो भरत ने बोला कि वो सबसे बड़े वाले पीकॉक के ऊपर ही होती है सिर पे, बाकी सब पे नहीं होती है। और भगवान राम का जन्म सबसे पहले हुआ था, ये इस सत्य को कोई नहीं रोक सकता है, और इसका नेचुरल आउटकम है कि राम को ही अयोध्या में राजा बनना चाहिए, और मैं ये करके रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पे एक चीज आती है, कैकेयी के केस में जब कोई व्यक्ति केवल अपने एजम्पशन पे ही जीवन जीता है तो उसको ये फर्क नहीं पड़ता कि उसने जो ये चीजें सोची हैं उससे कितने लोगों को हानि पहुंचा है, कितने संबंध बिगड़े हैं। वो व्यक्ति पूरी तरह से इनसेंसिटिव हो जाता है। और फिर भरत आगे बोलते हैं कि आप किस प्रकार की माँ हैं, आपने अपने बेटे के लिए राज्य सुरक्षित करने के लिए कौशल्या के बेटे की जिंदगी को आपने अंधकार में डाल दिया। एक माँ के हृदय को कम से कम ये तो पता होता है कि दूसरी माँ को कैसा फील होता है, आपने केवल अपने बेटे का अच्छा सोचा, उसके लिए आपने दूसरी माँ के बेटे को जंगल भेज दिया। कई जानवर भी ये जानते हैं, जानवरों में भी जो फीमेल होती है वो भी ये जानती है। भरत पे उदाहरण देते हैं, एक बार कामधेनु, जो वशिष्ठ के कामधेनु थी, वो जब रास्ते में जा रही थी तो उन्होंने देखा कि कुछ बैल, छोटे बैल थे, छोटे उम्र के बैल थे जिनको किसान जोत रहा था, और उन बैलों से बहुत मेहनत कराई थी, उनकी उम्र ज्यादा नहीं थी तो वो बैल बहुत थक गए थे। तो उनको देख के कामधेनु की आंखों से आंसू आ गए थे, जबकि वो उनके बेटे नहीं थे, परंतु वो रोने लगी थी माँ की करुणा के कारण। तो भरत ने बोला कि इवन जानवरों के अंदर भी इतनी करुणा होती है, परंतु आप स्वयं माँ हैं, परंतु आपने दूसरे माँ के हृदय को नहीं समझा। आप कैसे सुखी हो सकते हैं जब आप देखेंगे कि दूसरी माँ का बेटा इतना दुख में है, और दूसरी माँ को आप रुला के कैसे कैसे शांत रह सकते हैं। इसलिए मैं अभी माता कौशल्या को रोने नहीं दूंगा, मैं जंगल में चला जाऊंगा और भगवान राम को यहाँ का राजा बनाऊंगा। इसके बाद भरत बताते हैं कि जब तक कोई ने जहर नहीं पिया है तब तक उसको कोई लॉस नहीं है, क्योंकि उस पर जहर का असर नहीं होगा। इसलिए अभी तक मैंने राज नहीं लिया है, इसलिए मेरे ऊपर कोई पाप नहीं लग सकता है। अगर कोई पाप है अभी मेरे ऊपर तो केवल यही है कि मैं आपके गर्भ में 9 महीने तक रहा, और इस पाप को मैं खत्म कर दूंगा बहुत तपस्या करके। और मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि आप या तो जंगल में जाके आग में जल जाओ, और या फिर अपने आप को मार डालो, क्योंकि आपका आपकी मृत्यु के बाद आपका नरकवास श्योर हो चुका है। आपके इस पाप के कारण आपका बहुत दुर्गति होने वाला है, इसलिए आप स्वयं अपने आप को खत्म कर दीजिए। इस तरह से माँ को चिल्लाने के बाद भरत पूरी तरह से परेशान हो गए और दुख में अपने रूम पे गिर गए, जहां पे कैकई कुछ दिन पहले कैकई को भवन में जाके रो रही थी, अभी भरत उसी जगह पे रो रहे हैं। इससे पता चलता है कि कर्म का नियम कैसे कार्य करता है। पहले कैकई ने रो रो के दशरथ को दुखी किया था, और अभी उनका ही पुत्र रो रो के उनको दुखी कर रहा है। जिस काम के लिए उन्होंने अपने पति को इतना दुखी किया था, उसी के कारण उनके पुत्र ने उनको इतना दुखी किया है। तो जो कर्म होता है वो कर्म किसी न किसी के द्वारा आता है। और जब कैकई ने ये सारी चीजों को देखा तो कैकई अपनी सारी गलती समझ गई और तुरंत रोने लगी। इतने सारे दिनों में लगातार रो रही थी। तो कैकई और भरत जो रो रहे थे उनसे चारों तरफ महल में सभी लोग को आवाज पहुंची और सभी वापस आ गए, सभी उनको देखने लगे, मिनिस्टर्स भी वहां पे आ गए। और इसके बाद भरत ने उठ के अयोध्या के जो भी प्रोमिनेंट लोग थे उन सभी प्रोमिनेंट लोगों को के सामने जाके क्षमा मांग रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा शत्रुघ्न भी वहां पे पहुंच चुके हैं। और जब भरत ने इस प्रकार से देखा कि उनके भाई वहां पे हैं, दोनों शत्रुघ्न को भी पता चल गया था कि क्या क्या हो गया है, वो दोनों एक दूसरे को देख के रोने लगे, गले से लगाए। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि जो कुछ भी हुआ है उसको कैसे कैसे उसको खत्म करें। तो शत्रुघ्न ने उनको सजेस्ट किया कि सबसे पहले हम जाते हैं कौशल्या को कॉन्फिडेंस में लेते हैं, क्योंकि कौशल्या सबसे दुखी हैं, सबसे पहले उनको कॉन्फिडेंस में लेते हैं, उनको शांत करेंगे और उसके बाद हम आगे की चीज देखते हैं। तो ऐसा सोच के ये दोनों लोग कौशल्या के सामने जाते हैं। और कौशल्या के सामने जाके रोते हुए कौशल्या को गले से लगाते हैं, और तीनों लोग एक दूसरे को साथ में रोने लगते हैं, परंतु एकाएक कौशल्या उन दोनों को दूर दूर हटा देते हैं। और कौशल्या के जो आंसू थे वो आंसू गुस्से में बदल जाते हैं। कौशल्या एकदम उनके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। तो भरत से बोलती है, अभी तो आपकी खुशी का दिन है, अभी आप क्यों रो रहे हो। कि आपकी माँ ने ऐसा काम किया है जो कि दुनिया की किसी माँ ने नहीं किया है अभी तक, और मैं श्योर हूं कि आपको भी ये सब प्लान का पता था, और हो सकता है आप इस प्लान के हिस्से भी रहे हो। इस प्रकार से कौशल्या ने गुस्से में बोलना चालू किया। उसके बाद फिर कौशल्या ने बोला कि मेरा केवल एक ही क्वेश्चन है कि आपने मुझे क्यों जंगल में नहीं भेज दिया जब मेरे भाई मेरे बेटे को भेज रहे थे। शायद कहीं आपकी ऐसी इच्छा तो नहीं थी कि आप मुझे अयोध्या में हाउस अरेस्ट रखना चाहते हैं कि मेरा बेटा अगर आए तो आप मेरे द्वारा उसको ब्लैकमेल कर सको, कि अगर मैं यहाँ पे आपकी बंदी बन के रहूंगी तो राम यहाँ पे आक्रमण नहीं करेगा। शायद इसी तरह से आपने सोचा है, परंतु मैं आपको एश्योर कर सकती हूँ कि आपको राज्य करने में मुझे कोई बाधा नहीं पहुंचाऊंगी। अगर राम यहाँ होते तब भी वो कुछ नहीं करते। इसलिए हे राजा, अभी मेरे केवल एक ही रिक्वेस्ट है आपसे कि कम से कम मुझे मेरे बेटे के साथ जंगल भेज दो। मैं इस राज्य को छोड़ के चली जाऊंगी, मेरे साथ मेरे पति का डेड बॉडी आप दे दो, और घर की अग्नि, यज्ञ की अग्नि लेके जाऊंगी। जहां पे भी मेरा बेटा है मैं वहां रहूंगी। कम से कम आपके अंदर इतनी कृपा है अभी कि आप इतनी छोटी सी मेरी इच्छा पूरी कर सकते हो। ऐसा बोल के कौशल्या फिर से रोने लगे, और कौशल्या के ये जो शब्द थे ये भरत के हृदय में एक नीडल्स सुई के जैसे अंदर गए, और भरत भी वहां पे उनके चरणों में गिर गए। उनके भरत से इतने आंसू आ गए थे कि उनके आंसू से कौशल्या के चरण पूरे गीले हो गए, और भरत ने उनसे बोला कि मेरे ऊपर संशय मत करिए। और भरत ने सोचा कि कुछ स्टेप लेना चाहिए। उन्होंने भरत ने कुछ ऐसी ऐसी वाव ऐसी क्या बोलते हैं वाव को हिंदी में, ऐसी शपथ ली कि अगर भरत थोड़े से भी इन्वॉल्व थे इस राम को बाहर जंगल भेजने के प्लान में तो उनको इन सब पापों का फल मिलना चाहिए। वो सब भरत बताते हैं यहाँ पे कि ये सारे पाप इतने खतरनाक हैं कि इसमें से कोई भी एक पाप व्यक्ति को कई जन्मों तक नरक में भेज सकता है। और भरत ने बोला कि अगर मैं इन्वॉल्व हूँ राम को वनवास में तो मुझे इन सभी पापों का फल मिलना चाहिए। कौन कौन से पाप थे? चार चार प्रकार के पाप भरत ने बोले। भरत ने चार कैटेगरी बोले। पहला पाप जो कि एक अकाउंटेबल लीडर को फेस करना पड़ता है, दूसरा जो कि एक धार्मिक व्यक्ति को फेस करना पड़ता है, तीसरा एक सामाजिक व्यक्ति को। तो अकाउंटेबल लीडर के लिए क्या क्या पाप होता है कि जब कोई लीडर या राजा जनता को प्रोटेक्शन नहीं देता है और टैक्स कलेक्ट करता है, या युद्ध के नियम तो होता है, या युद्ध से भाग जाता है, या अपने अपने पिता को अरेस्ट करता है या मार डालता है, या राज्य में लोगों को ज्यादा ज्यादा लोड करता है, मतलब ज्यादा लेबर कराता है, उनको पैसा नहीं देता है। इसके बाद धार्मिक फॉलोअर के लिए कौन कौन से पाप हैं कि कोई अगर उसने किसी ब्राह्मण को कुछ दान देने का बोला है फिर दान नहीं दे, भगवान को भोग लगाए बिना भोजन करना, अपने गुरुओं को सम्मान नहीं देना, और शास्त्रों को मैकेनिकल तरीके से पढ़ना, शास्त्रों को अपने जीवन में उपयोग नहीं करना। और सामाजिक पापों में आता है कि भिखारियों को भिक्षा नहीं प्रदान करना, दूसरे के घर में आग लगाना, और पीने के पानी को गंदा करना, दूसरे को जहर प्रदान करना, और कोई प्यासे व्यक्ति को परेशान करना, गाय को मारना। इसके बाद एक हाउस होल्डर के लिए क्या क्या पाप है? अपनी पत्नी को छोड़ के दूसरी की पत्नी के पीछे भागना, और अपने मित्र को धोखा देना, माता पिता की सेवा नहीं करना, उनको मारना पीटना, और किसी ने अगर हमें कोई सीक्रेट बताया तो सीक्रेट दूसरे को बता देना, और अपने फैमिली और सर्वेंट्स को दिए बिना सारा भोजन स्वीकार करना, और अपने पुत्रों को छोड़ देना, और अब पाप के द्वारा कमाई करके अपनी फैमिली का पालन करना। ये कुछ कुछ भरत ने बोला कि इन सभी पापों का फल मुझे मिल जाए अगर मैं थोड़ा सा भी इन्वॉल्व हूं। और जब भरत ने इस प्रकार से शपथ लिया तो इस शपथ लेके शपथ के द्वारा कौशल्या को शांति मिली। कौशल्या समझ गई कि भरत इनोसेंट है, निर्दोष है। कौशल्या उनके पास तक गई और उन्होंने भरत से प्रसन्न होके बोला कि कौशल्या ने बोला कि हो सकता है चंद्रमा अपनी किरणों के द्वारा पॉइजन जहर निकाल सके, हो सकता है आइस बर्फ के में से आग निकल सके, हो सकता है जो जल में रहने वाले प्राणी है वो जल को त्याग दें, और हो सकता है आध्यात्मिक चीजें भी इफेक्ट देना छोड़ दें, परंतु भरत और राम के प्रति प्रेम कभी भी कम नहीं हो सकता। तो जब इस प्रकार से कौशल्या ने बोला, भरत पूरे दिन में पहली बार भरत थोड़े से मुस्कुराए, और कौशल्या ने उनको गले से लगाया, और भरत कौशल्या की गोदी में गोदी में बैठ के रोने लगे जोर जोर से। अभी वो रो रहे थे परंतु कम से कम ये तो खुशी था उनको कि पूरे अयोध्या में कम से कम एक व्यक्ति को तो उन्होंने कन्विंस किया है। तो इस तरह से सोच के कौशल्या, भरत और शत्रुघ्न दोनों रोने लगे। तो यहाँ पे एक टेस्ट है, भरत का एक टेस्ट हुआ क्रिटिसिज्म को कैसे कन्फ्रंट किया जाता है। जब कौशल्या को सुना भरत ने कि कौशल्या उनको क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो भरत ने अपने आप से तीन प्रश्न पूछे कि वो हमें क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हैं, क्या वो पर्सनल प्रॉफिट के लिए क्रिटिसाइज कर रहे हैं या पर्सनल पेन के द्वारा क्रिटिसाइज कर रहे हैं, और ये क्रिटिसिज्म किसके द्वारा दिया जा रहा है, मेरे सीनियर्स के द्वारा जिनको मैं सम्मान करता हूँ, या क्रिटिसिज्म उनकी खुद की आदत है। तो उनको आंसर मिला कि एक्चुअली कौशल्या इतनी ज्यादा हर्ट है, इतनी ज्यादा अपने आप को कमजोर फील कर रहे हैं। हाँ, वो कभी भी किसी को क्रिटिसाइज नहीं करती, परंतु ये जो शब्द बोल रही हैं, उनको जो इतना ज्यादा दुख हुआ है उस दुख के कारण ये शब्द निकले हैं। इसलिए उस क्रिटिसिज्म को रोकने के लिए भरत ने इतनी सारी शपथ ली, और वो शपथ लेके उन्होंने कौशल्या को शांत किया। तो ये भरत का पहला टेस्ट, भरत सब सक्सेसफुल होते हैं। इसके बाद कल के सेशन में हम देखेंगे भरत के अगले टेस्ट। वशिष्ठ मुनि उनके दो टेस्ट लेते हैं, फिर निषाद राज उनका टेस्ट लेते हैं, फिर भारद्वाज मुनि उनका टेस्ट लेते हैं। इस प्रकार से भरत को भगवान राम के पास पहुंचते पहुंचते बहुत सारे टेस्ट में पास होना पड़ता है, और फाइनली वो चित्रकूट में भगवान राम से मिलते हैं। वो हम कल और परसों के सेशन में डिस्कस करेंगे। किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकते हैं, अनम्यूट करके कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं।
हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे
हरे कृष्ण।
एक प्रश्न आता है। कुछ भक्त है इसको हमेशा बता रहे हैं कि जो कहीं कहीं नहीं जो ये प्लानिंग पूरी हुई भगवान राम को वनवास भेजने की, तो
हाँ
इसके लिए थी कि ताकि सीता माता और भगवान को साथ में रह सके, क्योंकि जब राज्य का कारोबार था तो भगवान के साथ में समय नहीं बिता पाते।
हाँ
ये एक प्रश्न कभी के भक्त कुछ भक्त लोग बोलते हैं, तो ये कितना हद तक सही है बोलूं।
एक्चुअली उसके पीछे भी एक स्टोरी है। क्या है, लक्ष्मी नारायण जब वैकुंठ में रहते थे तो वैकुंठ में हमेशा शेषनाग साथ में रहते थे, तो लक्ष्मी जी को भगवान के साथ प्राइवेसी कभी नहीं मिलती थी। तो लक्ष्मी जी की हमेशा कंप्लेन रहती थी कि भगवान से कुछ पति पत्नी साथ में बात ही नहीं कर पाते हैं, क्योंकि शेषनाग हमेशा सुनते रहते थे। तो लक्ष्मी जी ने उनसे बोला था कि धरती पर चलते हैं। तो धरती पे गए, पर जब राज्य में भगवान राम खुशी थे, मतलब बहुत ज्यादा बिजी थे, तो वहां भी उनकी इच्छा पूरी नहीं हो रही थी। तो फिर सीता जी ने बोला कि अभी हमें जंगल में जाना होगा। ये एक स्टोरी आती है, एक पुराण की स्टोरी है, एक आचार्य ने इस प्रकार से डिस्क्राइब किया है। परंतु वो लीला को हम एक्सक्यूज जैसा नहीं ले सकते, वो पिछला कारण है। भगवान राम और सीता कुछ प्राइवेट लाइफ साथ में बिताना चाहते थे। एक्चुअली सीता जी क्या बोलती थी कि देखो पार्वती जी और शंकर जी कितने अच्छे से रहते हैं, एक पेड़ के नीचे रहते हैं, वो पति पत्नी जैसा जीवन जीते हैं, मुझे आपके साथ मौका ही नहीं मिलता, अनंत से हमेशा आपके पास रहते हैं, और कोई ना कोई भक्त यहाँ पे आते ही रहते हैं, कभी नारद आते रहते हैं, कोई ना कोई आता रहता है, तो मुझे आपके साथ टाइम व्यतीत करने का मौका ही नहीं मिलता है। इसलिए वो पूरा पास्ट टाइम उन्होंने एनालाइज किया इस प्रकार से। तो वो लीला के हिसाब से ठीक है, परंतु उससे हम कैकेयी की गलती को हम जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं।
ओके, थैंक यू वेरी मच।
और कोई प्रश्न है किसी का? ओके,
श्री
अगर
कृष्ण
कोई
पूरी दोनों चला
यस प्रभु।
जी, हम लोग सुनते थे कि जो कैकेयी महारानी ने ऐसा वरदान मांगा था तो राम जी की ही इच्छा थी ऐसी, तो कहाँ तक सही है? क्योंकि हम लोग बचपन से सुनते आए हैं ऐसा कि राम जी ने ही चाहा था कि वो जंगल पे जाएं और उनको कुछ रावण को मारना है और उनके जो जो भक्तों से मिलना है, सबरी जी से मिलना है, तो इसके लिए ऐसा कैकेयी जी ने खुद से ही जाके वरदान मांगे थे दशरथ महाराज से।
नहीं, ऑब्वियसली रावण ने जब सब जगह वो किया था, इतना ज्यादा आतंक मचाया था, तो विष्णु जी ने उसी लिए अवतार लिया था। तो वो तो भगवान का ही एग्जीक्यूशन प्लान था। अगर भगवान नहीं जाते, जैसे भारद्वाज मुनि ने ये बोला भी था, शायद कल की क्लास में आएगा वो। भारद्वाज मुनि जब समझाते हैं भरत को, तो ये चीज बोलते हैं कि राम नाम का जो जो सूर्य का अस्त हुआ है अयोध्या में, अभी वही राम चंद्रमा के रूप में पूरी दुनिया में व्याप्त होंगे। हालांकि सूरज सूरज के रूप में उनका अयोध्या में अस्त हुआ है, अभी वो चंद्रमा के जैसे पूरे संसार को प्रकाशित करेंगे। तो वो भगवान राम के अवतार का उद्देश्य था, इसलिए उनको अयोध्या से जाना तो जरूरी था, और जो कैकेयी थी वो इसके लिए इंस्ट्रूमेंट के जैसे कार्य करी भगवान की उस लीला को पूरा करने के लिए। ओके ठीक है, कल हम इसी टाइम पे मिलते हैं 8 बजे, और भारत के आगे जो टेस्ट होने वाले हैं उनको डिस्कस करेंगे। जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे।